नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रायन हॉलिडे की नॉन फिक्शन पुस्तक ट्रस्ट मी, आई एम लाइंग, कन्फेशंस ऑफ अ मीडिया मैनिपुलेटर, डिजिटल पत्रकारिता। जनसंपर्क और ऑनलाइन प्रचार की अर्थव्यवस्था पर आधारित एक विवादास्पद विश्लेषण है। पहली बार 2012 में प्रकाशित यह पुस्तक लेखक के मीडिया रणनीतिकार के अनुभवों से निकलती है, जिनमें उन्होंने चर्चित ग्राहकों के लिए ध्यान और कवरेज हासिल करने का काम किया था। हॉलिडे का मुख्य तर्क है कि तेज रफ्तार ब्लॉग संस्कृति में खबर का मूल्य अक्सर उसकी सत्यता से नहीं, बल्कि क्लिक, लिंक, साझा किए जाने की क्षमता और विज्ञापन आय से तय होता है। पुस्तक का पहला भाग बताता है कि छोटे ब्लॉग किस तरह बड़ी खबरों की दिशा प्रभावित करते हैं और उन्हें कैसे भटकाया जा सकता है। दूसरा भाग इस व्यवस्था के मानवीय, व्यावसायिक और नैतिक परिणामों पर केंद्रित है। यह पारंपरिक मीडिया आलोचना भर नहीं है, क्योंकि लेखक स्वयं उन तरीकों में शामिल रहने की स्वीकारोक्ति करता है जिनकी वह आलोचना करता है। इसलिए पुस्तक सूचना के उत्पादन, प्रसार और विश्वसनीयता को समझने का असहज लेकिन उपयोगी दस्तावेज बनती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ब्लॉग से मुख्यधारा तक अफवाह के ट्रेड अप होने की प्रक्रिया। पुस्तक का सबसे केंद्रीय विचार यह है कि एक मामूली, अधूरी या जानबूझकर गढ़ी गई सूचना भी डिजिटल मीडिया की श्रृंखला में ऊपर चढ़ते चढ़ते वैध खबर जैसी दिखने लगती है। हॉलिडे इसे ट्रेड अप की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शुरुआत अक्सर किसी छोटे ब्लॉग, टिप्पणी, अनाम संकेत या कथित लीक से होती है। छोटा प्रकाशन तेजी से सामग्री डालने और ट्रैफिक पाने के लिए उसे छाप देता है। फिर दूसरे ब्लॉग पहले स्रोत की जगह उस प्रकाशित पोस्ट को स्रोत मान लेते हैं। कुछ चरणों बाद बड़ी वेबसाइटें यह मान सकती है कि मामला पहले से कई जगह रिपोर्ट हो चुका है, जबकि मूल दावे की स्वतंत्र जांच किसी ने नहीं की होती। इस प्रक्रिया में पुनर्प्रकाशन को प्रमाण समझ लिया जाता है। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि डिजिटल प्रसार की गति सत्यापन की गति से अधिक हो सकती है। किसी कहानी का बार बार दिखाई देना उसकी विश्वसनीयता का प्रमाण नहीं, बल्कि एक ही कमजोर दावे की प्रतिध्वनि भी हो सकता है। पाठक के लिए व्यावहारिक शिक्षा यह है कि किसी वायरल दावे पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके सबसे पुराने उपलब्ध स्रोत, मूल दस्तावेज, प्रत्यक्ष गवाह और स्वतंत्र पुष्टि को देखना चाहिए। पत्रकारों के लिए संदेश और कठोर है। दूसरे मीडिया संस्थान की रिपोर्ट को आधार बनाना पर्याप्त नहीं है। मूल दावे तक लौटना ही संपादकीय जिम्मेदारी का आवश्यक हिस्सा है। दूसरा, पेज व्यू अर्थव्यवस्था और क्लिक योग्य सामग्री का दबाव। हॉलिडे ऑनलाइन मीडिया की कमजोरियों को केवल व्यक्तिगत बेईमानी का परिणाम नहीं मानते। उनके अनुसार समस्या का बड़ा हिस्सा उस व्यावसायिक ढांचे में है जहां विज्ञापन आय, पाठक संख्या, पेज व्यू, लिंक और तत्काल ध्यान पर निर्भर करती है। जब किसी वेबसाइट को लगातार नई सामग्री प्रकाशित करनी हो, कर्मचारी कम हो और प्रतिस्पर्धी पहले प्रकाशित होने की दौड़ में हो, तब गहन रिपोर्टिंग और तथ्य जांच महंगी तथा धीमी लगने लगती है। इसके विपरीत विवाद, आक्रोश, सेक्स, भय, सेलिब्रिटी और चौंकाने वाले शीर्षक तुरंत पाठक खींचते हैं। इसीलिए पुस्तक बार बार दिखाती है कि अच्छा होने और फैलने योग्य होने में अंतर है। एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा सीमित रुचि पा सकता है, जबकि अस्पष्ट पर या उत्तेजक शीर्षक व्यापक प्रसार हासिल कर सकता है। यह मॉडल संपादकों और लेखकों को हमेशा झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं करता, लेकिन वह ऐसी सामग्री के पक्ष में प्रोत्साहन बनाता है जो अधूरी, अतिरंजित या संदर्भहीन हो सकती है। पुस्तक का उपयोगी विश्लेषण यह है कि मीडिया की त्रुटियों को समझने के लिए व्यक्ति की नीयत के साथ संस्थागत प्रोत्साहनों को भी देखना चाहिए। पाठक शीर्षक को निष्कर्ष न माने, प्रकाशन के व्यावसायिक हित को पहचाने और लेख की गुणवत्ता को उसके वायरल होने से अलग कसौटी पर परखें। तीसरा, मीडिया मैनिपुलेटर के तरीकों का नैतिक विरोधाभास। पुस्तक में हॉलिडे उन हथकंडों का वर्णन करते हैं जिनसे प्रचारक ब्लॉगों की जरूरतों का लाभ उठाते हैं। इनमें तैयार सामग्री देना, ध्यान खींचने योग्य कोण बनाना, विवाद को हवा देना, अनुकूल शीर्षक सुझाना, टिप्पणियों और ट्रैफिक के संकेत पैदा करना तथा तकनीकी प्रणालियों से प्रसार बढ़ाना शामिल है। उनका तर्क है कि ऐसे तरीके इसलिए काम करते हैं क्योंकि कई प्रकाशनों को सस्ती सामग्री, स्पष्ट कथा और तुरंत प्रतिक्रिया चाहिए होती है। हालांकि पुस्तक की सबसे बड़ी नैतिक जटिलता यही है कि लेखक इन प्रक्रियाओं के बाहरी आलोचक नहीं है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने प्रचार के लिए भ्रामक दावों, बनावटी पहचान या योजनाबद्ध उकसावे का सहारा लिया। इससे पुस्तक को अंदरूनी जानकारी की ताकत मिलती है, लेकिन लेखक की विश्वसनीयता पर प्रश्न भी उठता है। कुछ पाठक इसे आत्मस्वीकृति और चेतावनी मानेंगे, जबकि अन्य इसे उन्हीं तरीकों का आकर्षक प्रदर्शन समझ सकते हैं। इस द्वंद्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पुस्तक से सबसे जिम्मेदार निष्कर्ष यह नहीं है कि पाठक इन तकनीकों को अपनाएं, बल्कि यह है कि प्रचार, रिपोर्टिंग और जनमत के बीच की सीमाएं कितनी आसानी से धुंधली हो सकती है। संचार पेशेवरों के लिए यह एक नैतिक परीक्षा भी है। अल्पकालिक कवरेज और दीर्घकालिक भरोसे में चुनाव करना पड़ता है, और गलत सूचना से मिलने वाला लाभ प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक विश्वास की कीमत पर आ सकता है। चौथा, हेडलाइन, संदर्भ और पाठकीय भागीदारी से बनने वाला भ्रम। हॉलिडे की आलोचना केवल स्रोतों और पत्रकारों तक सीमित नहीं रहती, वे यह भी दिखाते हैं कि पाठक का ध्यान और प्रतिक्रिया उस तंत्र का हिस्सा है जिसे प्रचारक प्रभावित कर सकते हैं। ऑनलाइन वातावरण में बहुत से लोग केवल शीर्षक, अंश, स्क्रीनशॉट या सामाजिक मंचों पर साझा की गई पंक्ति देखकर राय बना लेते हैं, इसलिए शीर्षक अक्सर लेख के पूरे संदर्भ से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कोई सावधानी भरा लेख भी सनसनीखेज हेडलाइन के कारण अलग अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसी तरह टिप्पणियां, साझा किए जाने की संख्या और तेजी से बढ़ता आक्रोश किसी मुद्दे को वास्तविक महत्व से अधिक बड़ा दिखा सकते हैं। पुस्तक के अनुसार मैनिपुलेटर इस व्यवहार को समझकर ऐसी सामग्री तैयार करते हैं जो पाठक को प्रतिक्रिया के लिए उकसाए, भले ही वह जानकारी पूर्ण न हो। इसका परिणाम यह होता है कि ध्यान को सत्य का विकल्प मान लिया जाता है। किसी बात पर बहस होना, उसका व्यापक रूप से साझा होना या उसके बारे में बहुत सी पोस्ट मिलना उस बात के सही होने की गारंटी नहीं देता। इस हिस्से का व्यावहारिक महत्व मीडिया साक्षरता में है। पाठक को शीर्षक के बजाय पूरा लेख पढ़ना चाहिए, तारीख और मूल संदर्भ देखना चाहिए, भावनात्मक प्रतिक्रिया को थोड़ी देर रोकना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि सामग्री से किसे ट्रैफिक, प्रतिष्ठा या व्यावसायिक लाभ मिल रहा है। यह सावधानी हर गलती खत्म नहीं करती, पर हेरफेर की प्रभावशीलता घटा सकती है। अंत में खुलासे से होने वाली क्षति और जवाबदेही की अधूरी समस्या। पुस्तक का दूसरा व्यापक आयाम यह है कि मीडिया हेरफेर को केवल चतुर मार्केटिंग या उद्योग की तकनीक मानना खतरनाक है। जब असत्य या विकृत कथा फैलती है तो उसका असर केवल प्रचार पाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। कंपनियों के कर्मचारी, किसी आरोप से जुड़े लोग, पाठक और सार्वजनिक बहस सभी उसके परिणाम भुगत सकते हैं। एक बार खबर कई मंचों पर पहुंच जाए तो बात का खंडन अक्सर उतनी दूरी तय नहीं करता। डिजिटल अभिलेख, खोज परिणाम और दोहराए गए संदर्भ उस दावे को लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। हॉलिडे का तर्क यह संकेत देता है कि मीडिया प्रणाली में जवाबदेही बिखरी हुई है। स्रोत कह सकता है कि पत्रकार को जांच करनी चाहिए थी। पत्रकार कह सकता है कि उसने प्रकाशित रिपोर्ट पर भरोसा किया। मंच कह सकता है कि वह केवल वितरण का माध्यम है। पाठक कह सकता है कि उसने साझा की गई जानकारी पर विश्वास किया। इस तरह नुकसान के लिए कोई एक पक्ष पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता। पुस्तक इस संरचनात्मक समस्या को पहचानने में प्रभावी है, भले ही उसके समाधान सीमित हो। इसके आधार पर बेहतर अभ्यास स्पष्ट होते हैं। प्रकाशनों को सुधार को उतनी ही प्रमुखता देनी चाहिए जितनी मूल खबर को मिली थी। पत्रकारों को अनाम दावों और तैयार प्रचार सामग्री के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए। संस्थानों को गति के बजाय सत्यापन को महत्व देना चाहिए, और पाठकों को सूचना साझा करने को निष्क्रिय उपभोग नहीं बल्कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व मानना चाहिए। निष्कर्ष में, ट्रस्ट मी, आई'म लाइंग उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजिटल पत्रकारिता, जनसंपर्क, मार्केटिंग, राजनीति में सूचना के इस्तेमाल या सोशल मीडिया पर बनने वाली राय को अधिक गहराई से समझना चाहते हैं। पत्रकारिता और संचार के विद्यार्थियों को इससे खबरों की आर्थिक संरचना और स्रोत जांच की जरूरत समझने में मदद मिल सकती है। जनसंपर्क तथा मार्केटिंग पेशेवरों के लिए इसका मूल्य दोहरा है। यह ध्यान खींचने की तकनीकों का वर्णन करता है, पर साथ ही दिखाता है कि छल, कृत्रिम विवाद और असत्य पर आधारित प्रचार किस तरह भरोसे को नष्ट कर सकता है। सामान्य पाठक के लिए पुस्तक का मुख्य लाभ अधिक सतर्क मीडिया उपभोग है। यह सिखाती है कि वायरलता, बार बार दोहराव और प्रतिष्ठित मंच पर प्रकाशन को सत्य का अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए। समान विषय की कई पुस्तकों के विपरीत इसका अंतर लेखक की अंदरूनी भूमिका में है। हॉलिडे व्यवस्था का केवल सैद्धांतिक आलोचक नहीं है, बल्कि उन रणनीतियों में भागीदारी स्वीकार करने वाला व्यक्ति है जिनसे वो चेतावनी देता है। यही तथ्य पुस्तक को तीखा और असहज बनाता है, हालांकि उसी कारण इसे आलोचनात्मक दूरी के साथ पढ़ना भी जरूरी है। इसमें बताए गए तरीके नैतिक मार्गदर्शिका नहीं है और पुस्तक हर व्यावहारिक समाधान विस्तार से नहीं देती। फिर भी यह क्लिक आधारित मीडिया मॉडल प्रचार और खबर के आपसी संबंध तथा गलत सूचना के लंबे असर पर एक प्रभावशाली प्रारंभिक ढांचा प्रदान करती है। इसकी स्थायी प्रासंगिकता इस बात में है कि माध्यम बदलने पर भी ध्यान की प्रतिस्पर्धा, तेज प्रसार और कमजोर सत्यापन की समस्याएं बनी रहती हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लायन हॉलिडे, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।